लूका उसके पहले अध्याय से शुरू करेंगे, ताकि हम जान सकें कि यीशु के जन्म से पहले भी क्या कुछ घटा था, क्या कुछ हुआ था। और इसलिए मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसके हम पहले अध्याय में जाएंगे और पहले अध्याय के कुछ पदों पर हम विचार करेंगे, कुछ करेंगे कि उस पर देख सकें। जब हम सुसमाचार में जाते हैं, मैं अक्सर दोहराता हूं इस बात को, चार सुसमाचार मेरे और आपके पास पहुंचे हैं। और ये सुसमाचार, क्यों इनको सुसमाचार कहा गया है? इन सुसमाचार में विशेष रीति से प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, प्रभु यीशु मसीह की सेवा है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान है और प्रभु यीशु मसीह के संसार में आने की योजना का सब कुछ वर्णन है। और वही सुसमाचार प्रचार करने के लिए मुझे और आपको आदेश दिया गया है। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह की सेवा, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान और एक धन्य आशा कि वो प्रभु हमारे साथ फिर से आएगा। और यही एक जीवन का मुख्य संदेश है। बिना उसके द्वारा हमारे पास कोई और उद्धार का संदेश नहीं है। और इसलिए इसकी महत्वता बहुत जरूरी है। और हम इसीलिए ये प्रयास करते हैं अपनी कलीसियाओं में, आप जानते हैं ज़ायन की कलीसियाओं में, चाहे सत्य वचन है चाहे दूसरी कलीसिया में, हम क्रम से परमेश्वर के वचन को सीखना और अध्ययन करना और प्रचार करना पसंद करते हैं। और ये हमारे लिए आश का कारण होता है। जब मती के सुसमाचार को देखते हैं, यद्यपि मती से पहले मरकुस लिखा गया था, लेकिन मती को विशेष रीति से, विशेष अभिप्राय से पहले रखा गया, ताकि वो पुराने नियम और नए नियम के बीच में एक ब्रिज का काम कर सके, एक पुल का काम कर सके। जब मती सुसमाचार लिख रहा है तो मती प्रभु यीशु मसीह के जन्म को एक अलग रीति से देख रहा है, और उस यीशु के जन्म के जिसकी भविष्यवाणी बहुत पहले से आरंभ से हो चुकी है। जब हम लूका में आएंगे कुछ बातों को हम देखेंगे। और वो देख रहा है कि प्रभु यीशु मसीह राजा है, और यहूदी लोग एक राजा की प्रतीक्षा कर रहे थे, एक शासक की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे, क्योंकि वो रोमी शासन में थे और रोमी शासन की बंधुआई में होने के कारण उनके अंदर आत्मिक छुटकारे की ज्यादा चिंता नहीं थी, केवल एक शारीरिक और सामाजिक छुटकारे की चिंता के साथ वो ये सोच रहे थे कोई राजा आएगा और हमें आजाद कर देगा, हमें इस रोमी शासन से, इनकी जो उत्पीड़न है इनसे हमें छुटकारा दे देगा। लेकिन मती का सुसमाचार बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में प्रदर्शित करता है और पूरी रीति से उसके जन्म के बारे में और जन्म के बाद आगे उसकी सेवा के बारे में। और तब हम देखते हैं मती में न केवल प्रभु यीशु मसीह राजा है, यदि एक राजा है तो राजा का शासन कैसा होना चाहिए, उसका राज्य कैसे होना चाहिए। उसका राज स्वर्ग का राज है। अगर वो राजा है, उसका राज स्वर्ग का राज है, तो उस राज्य में नियम क्या होने चाहिए, उसके नियम धार्मिकता के नियम है। अगर वो राजा है, उसका राज है, उसके नियम है, तो उसकी प्रजा कैसे होनी चाहिए, उसकी प्रजा उन नियमों का पालन करने वाली होनी चाहिए। और ये पूरी चीज मती के सुसमाचार में हम देखते हैं कैसे मती क्रम से उसको वर्णन करता है। मरकुस सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वर्णन नहीं करता, वो सेवा से आरंभ करता है। लूका रचित सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह को एक मनुष्य के पुत्र के रूप में देखता है और वो एक सेवक के रूप में देख करके वर्णन करता है कि किस रीति प्रभु यीशु मसीह न केवल राजा बनकर के आए, लेकिन किस प्रकार से वो लोगों के लिए, उन छोटे लोगों के लिए आए। और इसीलिए गरड़ियों के संदेश की बात करता है। लेकिन जब लूका के सुसमाचार को पढ़ते हैं और जब मती के सुसमाचार को पढ़ते हैं, तो मती का सुसमाचार का आरंभ आदम की वंशावली से आरंभ होता है, लेकिन जब लूका के सुसमाचार को पढ़ते हैं तो लूका सुसमाचार जो है वो आदम से वह आरंभ नहीं करता, लेकिन उस वंशावली को बिल्कुल लास्ट में आता है, तीसरे अध्याय में, और वो नीच से लेकर तब आदम पर जाता है। लेकिन वंशावली का लिखना बहुत जरूरी था, ताकि लोग जान सके कि प्रभु यीशु मसीह एक वो प्राणी है जो एक वंश से होकर इस संसार में आया है और परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार आया है। जब यूहन्ना अपने सुसमाचार का वर्णन करता है तो योना सुसमाचार का वर्णन इस प्रकार से नहीं करता जैसे लूका और मत्ती करते हैं, लेकिन वो इस बात को देखता है कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है और वो सृष्टि उसमें वचन के द्वारा हुई, अर्थात प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन है, और वो कहता है वचन देहधारी हुआ, वो देहधारी होने का वर्णन करता है। लेकिन इन चारों सुसमाचार की सुंदरता अलग अलग है, पर इन दिनों में जो हम देखना चाहेंगे, हम लूका के सुसमाचार से कुछ बातों को देखना चाहेंगे जब तक हम आगे जितना बढ़ पाएंगे। लूका प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में से एक शिष्य नहीं था, वो तो कई समय बाद पौलुस के संपर्क में आया था, और पौलुस के संपर्क में आने के बाद उसने प्रभु के बारे में जाना, तब आकर उसने उस ज्ञान को प्राप्त करके बड़े क्रम के साथ लिखा। जब हम आज हम जो देखना चाहेंगे लूका उसका पहला अध्याय, उसके पहले अध्याय पहले पद से लेकर 25 पद तक, उसके पहले पद से लेकर 25 पद तक, और हम इन 25 पदों को एक मुख्य विषय में इस प्रकार से देख सकते हैं, यीशु के जन्म पूर्व तैयारी। यीशु का जन्म होने वाला है, लेकिन उससे पहले क्या तैयारी की गई है, किस प्रकार से वो एकदम से जन्म पे उतर नहीं जाता, लेकिन कुछ और वर्णन करता है। और जैसा अभी हमने यशायाह उसके 40 अध्याय को पढ़ा था, हमारी बहन बेटी रिंकी ने उसको पढ़ा था कि किस प्रकार से उस समय 700 साल पहले यशायाह नबी के द्वारा, यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी, यीशु के लिए भविष्यवाणी हो चुकी थी, और किस प्रकार से परमेश्वर की योजना को वहां पर प्रकट कर दिया गया था, अभी हम उसमें आएंगे वापस। लेकिन इन 25 अध्याय में यीशु के जन्म की तैयारी को देखते हैं, पहले से पहले 5 पद जो हैं वो खास उसे लेखक की प्रस्तावना है, एक परिचय है, पहले 5 पद क्यों, किस कारण से ये लूका का सुसमाचार लिखा जा रहा है, और तब उसके बाद 5 से लेकर के 25 पद तक प्रभु यीशु मसीह से पहले जो अग्रदूत बनकर आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसके जन्म की कथा कहानी है। अभी उसका जन्म उसमें नहीं है, लेकिन किस प्रकार से उसके बारे में सारा वर्णन है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हुए हम मैं बार से फिर से कहना चाहता हूं, जो लूका एक विशेष व्यक्ति को ध्यान में रख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति जिसका नाम लिखा हुआ है, वो कहता है 3 पद में, इसलिए अति मान्यवर थियोफिलुस, एक व्यक्ति जो अन्य जाति पृष्ठभूमि से प्रभु में आ गया, मसीह बन गया, विश्वासी बन गया, इसके नाम का अर्थ जो है वो परमेश्वर का प्रेमी थियोफिलुस के नाम का। और ये व्यक्ति अब जब इसने कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान लिया, प्रभु पर विश्वास कर लिया, तो इसके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, एक उत्सुकता उत्पन्न हो गई, मुझे और अधिक जानना है, मुझे और अधिक इस यीशु के बारे में जानना है। मेरे प्रियो, जब आप इस भवन में आते हैं और परमेश्वर के वचन में उसको सुनते हैं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, क्या ये मेरे और आपके अंदर ये जिज्ञासा, ये लालसा उत्पन्न होती है कि मुझे और अधिक यीशु के बारे में जानना है, मुझे और अधिक यीशु को जानना है, और यीशु के कैसे उसके क्या हुआ, कितने अधिक हमारे अंदर जिज्ञासा यीशु को और अधिक जानने की होती है। यहां एक व्यक्ति है जिसके अंदर, जो धनवान भी है, ऊंचे पद वाला भी है, एक अधिकारी भी है, इसके बारे में बहुत कुछ बाइबल के विद्वान बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन इसको लेकर लूका जो एक स्वयं वैद्य है और पौलुस के साथ रहकर उसकी सहायता करता है, उसकी देखभाल करता है, उसके सुसमाचार के सेवा में एक सहायक बनकर खड़ा हुआ है, वो इस व्यक्ति को ध्यान में रख करके उस सुसमाचार को लिखता है और पूरी कहानी को लिखता है यीशु के जन्म से पहले से आरंभ करके। पहले 5 पद, बहुत से लोगों ने उन बातों का विवरण लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया जो हमारे बीच में घटी है, ठीक वही बातें जो हमें उन लोगों से प्राप्त हुई, कह रहा है वही बातें जो हमें ठीक उन लोगों से प्राप्त हुई जिन्होंने इन बातों को प्रारंभ से देखा था और जो वचन के सेवक थे। कौन वचन के सेवक थे? संभवतः वो उन लोगों के लिए बात कर रहा है, उन शिष्य के बारे में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना था, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की सेवा को देखा था, उन्होंने यीशु मसीह को देखा था, और वो कह रहा है कि जिन्होंने आरंभ से देखा था और जो वचन के सेवक थे, अर्थात परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचा रहे थे। मेरे प्रियो, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं जो सेवा में परमेश्वर ने मुझे और आपको बहुत बड़ा पास्टर, बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा अगुवा ये नहीं बनाया है। कई बार हम इस बात में बहुत घमंड करते हैं। परमेश्वर ने, अगर हम सेवा में हैं तो परमेश्वर ने मुझे और आपको वचन का सेवक बनाया है, और इसलिए मेरे और आपके अंदर, मैं खास उस लोगों से कहना चाहता हूं जो सेवा में है, आपके अंदर मेरे अंदर परमेश्वर के वचन की सेवक के गुण को बढ़ना है, उसके लिए परिश्रम करना है, उसके लिए लालसा होनी है, उसके लिए अनुशासित होना है, उसके लिए त्याग करना है, और उसके लिए कठिन परिश्रम करते हुए वचन के सेवक के रीति से अपने आप को खड़ा करना है। और वो कहता है वचन के सेवक थे, यहां एक उपनाम करके दिया गया है। वो कह रहा आगे चल करके, इसलिए तीसरे पद में, इसलिए हे अति मानेवर, वो बहुत ही सामान्य सम्मान के साथ, आदर के साथ उस व्यक्ति का नाम ले रहा है, आरंभ से इन बातों को सावधानी से और ठीक ठीक जांचने के पश्चात, वो कह रहा है, लूका कह रहा है, मैंने उन लोगों को जिन लोगों ने यीशु के साथ रहकर सुना है, देखा है, उनसे मैंने बहुत अच्छी रीति से उन सारी बातों को जाना है, उन सारी बातों को समझा है, अब उनसे सीख करके, उनको जांच करके, उनको देख करके मुझे ये उचित लगा, जान पड़ा कि मैं इनको क्रमानुसार लिखूं, मैं इनको क्रमानुसार, और इसीलिए क्रमानुसार में वो यीशु का जन्म नहीं लाता लेकिन यीशु के जन्म से पहले की तैयारी को लाता है। इसीलिए वो यूहन्ना भविष्यता बपतिस्मा देने वाले के बारे में वर्णन करता है, कर लिखूं जिससे कि तू उन बातों को की वास्तव को जान ले जिनकी तुझे शिक्षा दी गई है। तूने शिक्षा को प्राप्त किया है, तूने उसके बारे में सुना है, लेकिन फिर भी अच्छा है थियोफिलुस कि तू ठीक ठीक से क्रमानुसार उन बातों को समझ ले जो प्रभु यीशु मसीह से संबंधित है। और तब पहले पांच पद में ये एक प्रस्तावना दे रहा है, क्यों वो लिख रहा है, क्या उसका कारण है, क्या उसके पीछे उसकी मंशा है, और उसको लिख के अब आगे वो उस वचन में आगे बढ़ रहा है। ये लूका के लिखने का उद्देश्य और अभिप्राय था पहले पांच पद में, लूका का अपना जीवन उस व्यक्ति के लिए। तब पांच से लेकर के सात पद तक, अब यहां पर हम एक ऐसे परिवार को देखते हैं, ऐसे कपल को देखते हैं जिसके बारे में तीन या चार मुख्य बातों को हम देखना चाहेंगे। एक विशेष बात है, कैसा परिवार है, लिखा हुआ उसके बारे में, यहूदा के राजा हेरोदेस के राजकाल में जकर्याह नाम एक याजक था जो अब्या के दल का था, और उसकी पत्नी का नाम इलिशिबा था जो हारून के वंश की थी। हारून भी याजक था, वो भी याजक वंश से आए, दोनों याजक वंश से, और ये दोनों पति पत्नी एक विवाहित कपल है, एक विवाहित दंपति है या विवाहित जोड़ा है, मैं इसको विवाहित जोड़ा कहूंगा, विवाहित जोड़ा है। लेकिन कैसे जोड़ा था, उनके जीवन की क्या विशेषता थी, छठे पद में, दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। पहली बात, ये एक ऐसा जोड़ा है, ये परमेश्वर की दृष्टि में दोनों धर्मी थे, इनका जीवन परमेश्वर के वचन का सम्मान करता था, इन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को स्थान दिया था, इन्होंने अपने जीवन में उस धार्मिकता को प्राप्त किया था जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त होती है। और पौलुस बहुत बार बार इस बात को कहता है, आगे चल के फिर हम उस बात को देखेंगे जो उसने कहा है कि सच है धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह में, अर्थात ये कहा जाए कि इनका जीवन परमेश्वर के साथ एक बहुत ही निकट संबंध था, धर्मी थे पहली बात। दूसरी बात, उनका आचरण, वे परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे, अब दूसरी बात, उनका आचरण प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार निर्दोष था। ना केवल उनका विश्वास, ना केवल उनका जीवन, ना उनका समर्पण, लेकिन उनका आचरण, उनका उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना चालना, कार्य करना, उनका आचरण कैसा आचरण था, उनका आचरण सारी आज्ञाओं और विधियों के अनुसार निर्दोष था। मैं और आप अपने आप को किस स्थान पर रखना चाहेंगे? थोड़ी देर के लिए सोचे, विचार करिए, क्या मेरा और आपका आचरण, मेरा और आपका मन विवेक इस बात की साक्षी देता है कि मेरा और आपका आचरण परमेश्वर के वचन के अनुसार है? उसने जो आज्ञाएं दी हैं उन आज्ञाओं का पालन कर रहा है? पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारे बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है। क्या वो पवित्रता में है, अधीनता में है, उन बुराई से हटकर जीवन व्यतीत करने वाला है, संसार के समझौते से अपने आप को अलग रखने वाला है? दिन भर मुझे और आपको संसार में रहना पड़ता है, हम उठते बैठते चलते फिरते हैं, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, हमारे कार्य, हमारी बोलचाल किस प्रकार की है, यह आचरण हमारे क्रियाओं को, हमारे कार्यों को, हमारे व्यवहार को दर्शाता है। और परमेश्वर का आत्मा ने कोई गलती नहीं करी, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कितनी सुंदर साक्षी है इस कपल के लिए, इस जोड़े के लिए, जो जोड़ा इस प्रकार था, लिखा है वह ये था, वो धर्मी है, वो परमेश्वर का, पहली चीज वो प्रिस्त्री याज के वंश से है, दोनों जन याज के वंश से है, दूसरी बात वो धर्मी है, तीसरी बात वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार निर्दोष है। निर्दोष जो हिंदी में, जो इंग्लिश में शब्द आया, ब्लेमलेस, सिनलेस नहीं है। परमेश्वर मेरे और आपको दिन पर दिन निर्दोषता में बढ़ाता है, और मेरे और आपके अंदर ये इच्छा और मन सा होनी चाहिए, और उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। लेकिन आगे चल के चौथी बात क्या थी, सातवें पद में, उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिशिबा बांझ थी और दोनों ही बूढ़े हो गए थे। बैरन कपल, निसंतान, सब कुछ के बाद कितनी प्रार्थनाएं उन्होंने करी होंगी, कितने उनके मन में लालसाएं रही होंगी, कितना सब कुछ हुआ होगा, लेकिन कितना अजीब लगता है उनके बारे में, वो ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। क्या परमेश्वर नहीं जानता था? क्या परमेश्वर उनके प्रति क्रूर था? क्या परमेश्वर की दृष्टि उनके ऊपर, उनके उनके ऊपर लगी नहीं थी? क्या परमेश्वर उनके साथ मखौल कर रहा था, या उनके विश्वास को, उनकी धार्मिकता को, उनकी निर्दोषता को अनदेखा कर रहा था? नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता था, क्योंकि वो तो उस आयु तक सीमित थे अपने आप को जिस आयु में जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन को उनकी आयु के बाद भी देख रहा था, जो उनके असंभव की स्थिति आ चुकी थी। बाइबल में बहुत सारी जगहों में पाते हैं, करीब बाइबल में 9 ऐसे लोगों का वर्णन है, समय नहीं कि मैं उन पर जाऊं, जिनके बारे में हम यही इसी को देखते हैं कि वो ऐसी स्थिति में थे और परमेश्वर से उन्हें प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। उनमें से एक जोड़ा ये भी है। जब आगे बढ़ते 5-7 पद तक, अब इनका परिचय, ये कैसे लोग थे, ये याज के वंश थे, ना केवल याज के वंश थे लेकिन ये धर्मी थे, निर्दोष थे, परंतु संतान रहित थे। सम्मत उनके लिए दुख का कारण होगा, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई है। हां, जरूर आगे चल के परमेश्वर को उन्हें अनुशासित करना पड़ा है, जरूर करना पड़ा। तब 8वें पद से लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कुछ और बातों को देखते हैं, किस रीति से ऐसा हुआ कि जब वो अपने दल की बारी आने के पर परमेश्वर के सम्मुख याजक का कार्य कर रहा था, परमेश्वर का मंदिर बनाया गया था, तो परमेश्वर के मंदिर को बनाए जाने के बाद, यद्यपि उससे पहले जब याजक का संदूक ये सब कुछ था, तो उसके सेवा करने के लिए पहले इतिहास में वर्णन है, पहले इतिहास उसका 23 अध्याय पढ़ेंगे या 24 अध्याय पढ़ेंगे, समय नहीं, लेकिन घर में आप पढ़ सकते हैं, पहला इतिहास उसका 23 अध्याय और 24 अध्याय, जहां पर बहुत ही सुंदर रीति से ये विवरण है कि किस प्रकार से ये याजकों की सेवा के समय निर्धारित किया जाता था। 24 उस समय याजक होते थे, और उन 24 याजकों में अलग अलग, हम देखें ये इस वंश से थे, इस वंश से थे, और भी थे उसमें, जहां पर भी वर्णन है, और उन 24 में से साल में एक बार 2 जनों का अवसर मिलता था कि वो परमेश्वर के सामने उस मंदिर में जाकर के उस बलिदान को चढ़ाएं। और इसीलिए कहा वो प्रतीक्षा करते, कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा, कब मेरा नंबर आएगा, कब मैं जाऊंगा, वो ये लोग प्रतीक्षा करते। और 12 महीने के अंदर केवल एक बार, यह सरल नहीं था। पर क्या वो आगे चल करके लिखा है तब नौपद में, तो याचकों की रीति के अनुसार वो चिट्ठी डालकर चुन लिया गया और प्रभु के मंदिर में प्रवेश करके धूप जलाए। कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन नियंत्रित कर रहा है? परमेश्वर नियंत्रित कर रहा है। यद्यपि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा है, तो परमेश्वर यहां पर अवसर प्रदान कर रहा है कि उसका नंबर आ जाए और वो परमेश्वर के उस भवन में, उस स्थान पे जाकर उपस्थित होकर के परमेश्वर के कार्य को करे, क्योंकि अब कुछ और होने वाला है। और तब अब वो चुन लिया गया। दसवें पद में धूप जलाने के समय सारा जनसमूह बाहर प्रार्थना कर रहा था। क्या होता था, याजक अंदर जाता था, लोग बाहर खड़े होकर प्रार्थना करते थे। उसके कई कारण थे। याजक का काम यह होता था कि जो लोग आते थे उनके लिए बलिदान करे, मध्यस्थ बन करके रह सके और उनके पापियों के लिए वो बलिदान चढ़ा सके। लेकिन लोग बाहर खड़ों का प्रतीक्षा करते थे। अगर आप देखेंगे उसके आगे चल में 10 पद के 11 पद में, और उसे धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रभु का एक दूत खड़ा दिखाई दिया। ये क्यों कर रहे थे, उसका एक खास कारण था। जैसे ही याजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता था, लोग सावधान हो जाते थे। लोग इस बात से सचेत रहते थे, क्या ये याजक वापिस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। अगर याजक की आवाज नहीं सुनाई देती थी, उसके याजक के शरीर में घुंघरू बंधे हुए थे और वो चलता था तो उसमें आवाज होती थी, पांव में एक रस्सी बंधी होती थी, क्योंकि पवित्र स्थान में अगर याजक की मृत्यु हो जाती थी तो लोग जाकर उसको निकाल नहीं सकते थे। उसको उस रस्सी को खींचा जाता था और तब वो याजक को बाहर निकालते थे। और जब बाहर लोग रहते थे तो बाहर लोग भयभीत होते थे, क्या ये परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को इसके द्वारा सुनेगा, क्या परमेश्वर हमारे बलिदान जो हमारे लिए बलिदान ही चढ़ा रहा है उसको ग्रहण करेगा। और अगर याजक की आवाज नहीं आती थी तो लोग घबराने लगते थे और इसलिए लोग बाहर प्रतीक्षा करा करते थे। पुराने नियम में बहुत ही रीति से हम देखते हैं। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए, मारे गए और जैसे उनके प्राण निकले, लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु उस महान, इस याजक से भी बढ़कर उस महान याजक के द्वारा उस कार्य की पूर्ति थी। अब किसी को डरने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पाप का छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बलिदान किया। अभी मैं उस पर आऊंगा भी। लेकिन ऊपर से नीचे इसलिए पड़ जाता था, नीचे से ऊपर फाड़ना आसान था, परंतु यह 150 फीट का लंबा पर्दा होता था और इससे ऊपर से नीचे कोई नहीं मनुष्य फाड़ सकता था। और अर्थात यह था, अब रास्ता साफ हो गया है, अब भय पाने की जरूरत नहीं है, अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं। जब यह हुआ तो 11 पद में लिखा हुआ है, और उसे धूप की वेदी की दाहिनी ओर प्रभु का एक स्वर्गदूत खड़ा दिखाई दिया। ये 11 और 12 पद बहुत इंपॉर्टेंट पद है, कई बार आपने पढ़ा होगा इसको, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। 11-12 पद कह रहा है, और देखो उसे देखकर जकरा घबरा गया और बहने उसे जकड़ लिया। स्वर्गदूत, जकरा क्यों घबरा गया, मैंने कौन सा अपराध किया है, क्या मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, ये स्वर्गदूत क्या मुझे मारने के लिए तो यहां नहीं आया है। और जकरा ने जैसे ही देखा, उसको बहने, लिखा है वह उसको बहने जकड़ लिया। बहुत सुंदर रीति से शब्द इस्तेमाल किए गए, घबरा गया, बहने उसे जकड़ लिया। पर स्वर्गदूत ने कहा, हे जकरिया, 400 साल तक मलाकी की पुस्तक के बाद परमेश्वर की वाणी का सुनाई दिया जाना बंद हो चुका था। अब उस 400 साल के बाद सबसे पहले परमेश्वर की वाणी पुनः सुनाई दी गई स्वर्गदूत के द्वारा, और वो जकरिया को सुनाई दी गई। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में क्या हुआ। अब 400 साल बाद परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है, हे सियोन मत डर, मैं तेरे मध्य में एक अद्भुत काम करूंगा। यशायाह 40 अध्याय को, उन प्रतिज्ञाओं को हमने पढ़ा है पूरी रीति से। मैं ये कर रहा, अब वो कार्य उस समय पूरा होने वाला है। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जकरिया नहीं समझ पा रहा है, जकरिया को तो ये चिंता हो गई क्या परमेश्वर मुझे दंड देने वाला है, मैंने कौन सा अपराध किया। अरे मैं तो धार्मिकता के साथ जीवन व्यतीत किया, मैंने तो निर्दोषता के साथ जीवन व्यतीत किया, मैंने तो परमेश्वर के वचन को माना, सब कुछ किया है, लेकिन अब मैंने कौन सा किया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यह घबराहट का समय था, यह परमेश्वर की वाणी को सुनने का समय था। अब वहां से परमेश्वर ने मनुष्य से बात करना पुनः आरंभ किया, वो गैप समाप्त हो गया। कितनी अद्भुत बात है मेरे प्रियो, अगर यह समय ना होता तो आज मैं और आप उसकी वाणी को सुनने से मजबूर रहते हैं। और तब आगे चल के हम देखते हैं, कहता है पर स्वर्गदूत ने कहा है जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्या प्रार्थना सुन ली गई? वो तो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए वहां पर आया था, लेकिन जरूर जब वो उसके अंदर पहुंचता होगा, उसके मन में रहता होगा, काश मेरे पास संतान होती, काश मेरे पास संतान होती, काश प्रभु मेरे पर विद्या करता, शायद उसके मन की मनसा ये थी। और तब परमेश्वर कहता है तेरी प्रार्थना सुन ली। मैंने कहा अभी पहले बताया कि बाइबल में 9 ऐसे कपल हैं जिनके बारे में यही बात लिखी गई है बाइबल में, पुराने नियम में। नए नियम में जकरिया है, और जकरिया के बाद फिर यीशु मसीह के लिए आया, बाकी 7 जो है वो पुराने नियम के लोग हैं। पर कितने सुंदर बात है। अब क्या हो रहा है यहां पर, भयभीत ना हो प्रोत्साहन, पहली बात परमेश्वर को प्रोत्साहित कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो घबराहट में है, भय में है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रोत्साहित करने वाला परमेश्वर है। उसने उसको ढाढ़स दिलाया है, उसने उसको साहस दिलाया है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे और आपको बार 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 ढाढ़स दिलाने का काम किया है। यहां तक कि जबकि वो अपने शिष्य को छोड़ करके स्वर्ग जा रहा था, उसने कहा तुम मत घबराना, मत भयभीत होना, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ बना रहूंगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं ना तुम्हें त्यागूंगा। ये उसने प्रतिज्ञा की थी, प्रोत्साहन। कितना अद्भुत लगा होगा जकरिया को जब उसने परमेश्वर की सी वाणी को सुना होगा। 400 साल बाद एक व्यक्ति वाणी को सुन रहा है परमेश्वर की, भयभीत मत हो। भय के कारण सारा आप इतिहास पढ़ेंगे, इसराइल का इतिहास पढ़ेंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वहां से भय शुरू हुआ, अदन की वाटिका से। जब अदन की वाटिका में मनुष्य ने पाप किया, और परमेश्वर शाम को आया, और शाम को आते परमेश्वर ने आवाज दी कि आदम आदम तू कहां है। आदम कहता है मैं तो डर गया था, अब मैं छिप गया। पाप ने मनुष्य के जन्म में भय को उत्पन्न कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के उद्धार ने मेरे और आपको भय से छुटकारा दे दिया। मेरे प्रियो, ये सच है, मनुष्य को पाप भयभीत बनाता है, आशाहीन बनाता है, निरुत्साही बनाता है, डरपोक बनाता है। और तब हम आगे चल के कहते हैं, पहली चीज प्रोत्साहन, दूसरी बात तेरी प्रार्थना सुन लिए, निश्चिता, एश्योरेंस, ना केवल एनकरेजमेंट है लेकिन एश्योरेंस है। तब आगे चल के कहता है तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यौना रखना। प्रतिज्ञा है और निर्देश है, 4 बातें हैं इसमें। पहली चीज इनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, भयभीत मत हो। दूसरी बात एश्योरेंस, निश्चिता, प्रार्थना सुन ली गई है। तीसरी बात प्रतिज्ञा, प्रॉमिस, एक पुत्र उत्पन्न होगा। चौथी बात निर्देश, इंस्ट्रक्शन, उसका नाम यौना रखना। परमेश्वर हमारा अद्भुत परमेश्वर है, प्रभु का धन्यवाद हो। जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ और उसके क्रम को देखता हूँ, उसके तरीकों को देखता हूँ, तो प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु आपने मुझे उस अंधकार से निकाल करके अपने जीवित परमेश्वर का बोध करा दिया। वो परमेश्वर जो अद्भुत परमेश्वर है, जो प्रेमी परमेश्वर है, अपने लोगों से व्यवहार करता है, उनकी परिस्थिति को जानता है, उनको पहचानता है, और उनके साथ वो खड़ा होता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी अपने जीवन में कैसी किसी ऐसी संघर्ष में होकर जा रहे हो, निराशा में होकर जा रहे हो, आपकी स्थिति शायद आशाहीन हो चुकी हो, लेकिन परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। भयभीत ना हो, घबराए ना, प्रभु आपके साथ है। ये सचमुच में कैसा अद्भुत संदेश है। जब सब लोग, पूरा इसराइल आशाहीन था, यहूदी लोग आशाहीन थे, निराश थे, वो कौमी, वो संस्थान, उस रोमी सरकार ने उनको जकड़ रखा था, रोमी सरकार इस प्रकार से उनको सता रही थी, परेशान कर रही थी, और वो बार बार छुटकारा, ठीक वही स्थिति। देखिए बाइबल को जो हम देखते हैं क्रम है, ठीक वही स्थिति इसराइलों की थी और परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुना, ठीक वही स्थिति रोमी शासन में थी और परमेश्वर ने उनकी दुआई को सुना। कई बार आज भी हम अपने चारों संसार में देखते हैं जो स्थिति दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है। हम नहीं जानते परमेश्वर किस प्रकार से छुटकारा दे, लेकिन घबराई नहीं, भयभीत ना हो, ये परमेश्वर ने, परमेश्वर पर भरोसा रखिए, वो मेरे और आपके साथ है। और तब आगे चल के कहता है योना के बारे में, ये योना व्यक्ति कैसा होगा, ये मैंने तीन मुख्य बातें उसके बारे में, उसका नाम तू योना रखना क्योंकि प्रभु की दृष्टि में वो महान होगा। सबसे पहले किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की दृष्टि में महान होगा। ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने योना को जन्म देने की तैयारी की है और उसके पिता को यह निश्चित दिला रहा है, ना कल करा घबरा मत, लेकिन देख तेरे पुत्र जो उत्पन्न होगा, अरे मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी इतनी बूढ़ी हो गई है, लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा? परमेश्वर कह रहा है वो सच में प्रभु की दृष्टि में महान होगा। और कितनी अद्भुत बात है, मुझे और आपको परमेश्वर वो वरद प्रदान कर दे, मुझे और आप पर परमेश्वर का वो अनुग्रह हो जाए, संसार चाहे माने या ना माने, लेकिन हम दिन पर दिन प्रभु की दृष्टि में बड़े होते जाए, बड़े होते जाए। इस संसार में हमें दुख और पीड़ाएं होंगी, क्या हमें त्याग करना पड़ेगा, वेदनाएं आएंगी, सतावनी आएंगी, घर वाले निकालेंगे, परेशान करेंगे, पति परेशान करेगा, पत्नी परेशान करेगी, बच्चे परेशान करेंगे, माता पिता परेशान करेंगे, बहुत लोग परेशान करेंगे, ऑफिसर परेशान करेंगे, जिस दफ्तर में आप काम करेंगे शायद वहां परेशान होगी, बहुत कुछ होगा, लोग नहीं जानते। लेकिन जब आप परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करेंगे, धार्मिकता में जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर आपको महान करेगा। तो मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं विश्वास थाम के रखना। तो वो आगे चल के कहता है, पहली बात वो महान होगा, दूसरी बात वो नशा नहीं करेगा। नशा नहीं करने का मतलब यह है कि वो अपने आप को किसी प्रकार से अशुद्ध नहीं करेगा। मेरे प्रियो, मुझे और आपको सावधान रहना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी देह परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, जो इसको नाश करेगा मैं उसको नाश करूंगा। कितनी बार प्रभु में आने के बाद भी फिर भी हम इस मंदिर को अशुद्ध बनाए रहते हैं, क्यों नहीं उस पवित्रता पे प्रवेश कर पाते? या तो हमारा समर्पण पूरा नहीं है, या प्रभु के उद्धार का कार्य पूरा नहीं है, या हमने, हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। क्यों नहीं आप रो रो के उपवास कर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करिए और मुझे परिवर्तित कीजिए, अपनी सामर्थ्य दीजिए, और इससे मेरा जीवन किसी प्रकार से अपवित्र ना होने पाए। परमेश्वर ने उसे कहा। और तब उसके बाद तीसरी बात वो कहता है, ना केवल पवित्र आत्मा, तब वो कहता है और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। लिखा है अपनी माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। क्या मतलब है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना? बाइबल में बहुत सारे लोगों को आप देखते चले आ रहे हैं, देखते चले आएंगे कि लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। पवित्र आत्मा की परिपूर्णता मेरे और आपके जीवन में दो काम करती है, इस बात को ध्यान रखिए। परमेश्वर का वचन स्पष्ट शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन प्रेरित काम उसके पहले अध्याय उसके आठवें पद में कहता है तुम ठहरे रहना, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, दूसरे दुनिया के छोर छोर तक मेरे गवाह बनोगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ मेरे और आपको सबसे पहले गवाह बनाती है। लेकिन योना में, योना 14-15-16 अध्याय का अध्ययन करेंगे तो पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में एक और लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा तुमको कायल करेगा। पवित्र आत्मा का कार्य मनुष्य को पाप से छुटकारा दिलाना है, पवित्र बनाना है। जितना अधिक पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन में कार्य करता जाएगा उतना अधिक कायलता मेरे जीवन में आती जाएगी और मैं और आप पाप से लड़ करके, पाप से हट करके प्रभु यीशु मसीह के समान उसकी सुंदरता में, उसकी पवित्रता में बढ़ते चले जाएंगे। आज पवित्र आत्मा को लेकर बहुत सारे विचार विमर्श है, भ्रम है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन। और यहां पर यूहन्ना ने क्या करा, जब वो पवित्र आत्मा से जब हम आगे चल के देखेंगे तो देखेंगे क्या करा उसने। जब वो खड़ा हुआ, उसने बपतिस्मा लिया, तो उसने सुसमाचार का प्रचार दृढ़ता से किया, हे सांप के लोगों लौट आओ, सावधानो, परमेश्वर का न्याय आ चुका है, कुड़ारा जड़ पर रखा हुआ है। क्या करा है वो, उनको चेतावनी दे रहा है, सुसमाचार को स्पष्ट रूप से उनके सामने दे रहा है, ताकि वो पश्चाताप करें और पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौट जाए। परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझे और आपको याब के साथ सुसमाचार प्रचार करने की शक्ति प्रदान करती है, समझ प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है, याब प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। कह रहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। कितना आयु थी, कितने दिन तक उसे सेवा करी यूहन्ना ने, आप जानते हैं सबको, यहां तक कि उसको अपना गला कटवाना पड़ा। क्यों हेरोदेस, तूने गलत किया है, तूने अपने भाई की पत्नी को अपने साथ रखा है, और इस बात को कहने के कारण उसके हेरोदेस के भाई की पत्नी जो उसके साथ थी इतने खिसिया गई कि जब समय आया तो यूहन्ना का गला कटवा दिया। लेकिन वो डरा नहीं, पवित्र आत्मा है, यह है वो कहता है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। और तब वो कह रहा है आगे चल करके उसी बात को, क्यों पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, वो इस्राएल के संतानों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर लौटा लाएगा। यह उस सामर्थ का काम, जो भटक गए हैं, जो पाप में हैं, जो नाश हो रहे हैं, परमेश्वर से पीछे उठ गए, दूर जा रहे हैं, भटक रहे हैं अंधकार में, उनको वो अपने संदेश के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा परमेश्वर की ओर लौटा लाएगा। यह पवित्र आत्मा की सामर्थ है, एक पापी को परमेश्वर की ओर पुनः फिरा लाना, उस नाश होने वाले को उद्धार के जीवन में प्रवेश करा देना। तब आगे चल करके जल्दी से मैं आगे बढ़ता हूं, ना के लिए तो कहता है कि इन सारी चीज, अब यूहन्ना की सेवा ना केवल वो लौटा लाएगा, लेकिन आगे चलकर वो कहता है 17 पद में, और वो उसके आगे एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर चलेगा कि पितरों का हृदय बच्चों के की ओर फेर दे। क्या मतलब है पितरों का हृदय बच्चों की ओर फेर दे? ये मेल मिलाप की सेवा है, मेल मिलाप की सेवा। ये जो हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं, जिन्होंने व्यवस्था को पालन किया है, और व्यवस्था को पालन करने के द्वारा वो सोच रहे हैं हम स्वर्ग में जा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, और जो अभी नए हैं, जो अभी सुसमाचार को सुनकर आगे चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनके मन को फेर करके उनको मेल मिलाप करेगा, और वो समझ नहीं पाएंगे उद्धार व्यवस्था में नहीं, लेकिन उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के प्रेम में है। लेकिन उसके साथ साथ ही क्या कह रहा है, और आज्ञा न मानने वालों के लिए धर्मियों की समझ पर ले आए, जिससे वे प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। यह है पवित्र आत्मा काम। वो लोग जो भटके हुए हैं, यशा इसी चीज को वर्णन कर रहा है, यशा 40 अध्याय, यशा 41 अध्याय, यशा 42 अध्याय, आप इनको देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के यशा की पुस्तक को दो भागों में बांट देते हैं, पहले अध्याय से लेकर 39 अध्याय तक पुराना नियम है, भविष्यवाणी उन सारे से। लेकिन जैसे ही आप 40 अध्याय में आते हैं, 40 अध्याय से लेकर 66 अध्याय तक ये 27 अध्याय है, और यशाया की पुस्तक पूरी बाइबल को प्रदर्शित करती है। पूरी बाइबल में 66 पुस्तकें हैं, पुराने नियम में 39 हैं, नए नियम में 27 हैं। पुराना नियम व्यवस्था को प्रदर्शित करता है, और यशाया की पुस्तक पुराने नियम को 39 अध्याय को वो व्यवस्था को प्रदर्शित कर रही है। लेकिन जैसे आप 40 अध्याय में आते हैं, 40 अध्याय से लेकर 66 अध्याय, ये 27 अध्याय पूरी रीति परमेश्वर के ग्रेस को, अनुग्रह को, प्रेम को, यीशु के की तैयारी को, यीशु के लिए भविष्यवाणी को उनको प्रकट करता है। और उसी इन 27 अध्यायों में सबसे श्रेष्ठ अध्याय यशाया उसका 53 अध्याय है, जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का सुसमाचार है। और इसीलिए बार बार जब भी हम इन वचनों को देखेंगे, हमें यशाया की पुस्तक बार बार देखने को मिलेगी। तब तो कहता है ना आज्ञा मानो धर्म को समझ लिया है, जिससे कि प्रभु के लिए वो एक योग्य प्रजा बना दे। आगे चल करके जकरा की प्रतिज्ञा जल्दी से समाप्त करूंगा, दो तीन बातें कह के। जकरा ने यीशु से पूछा, स्वर्दूत से पूछा, मैं इसे निश्चय रूप से कैसे जान सकता हूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। क्या जकरिया नहीं जानता था कि 400 साल तक परमेश्वर ने बातें नहीं करी है, और 400 साल के बाद परमेश्वर ने उसके ऊपर बड़ी कृपा की है कि अपनी वाणी को सबसे पहले उसको सुनाया है, और उसको सुनाने के बाद भी अभी भी उसके अंदर में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है। उसको तो कहिए कहना था, ठीक है आप, अगर आपने कहा है मैं विश्वास करता हूं, मैं उसको मानता हूं, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो अपने ऊपर देख रहा है, उसको अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी योग्यता दिखाई दे रही है। अरे मैं तो बूढ़ा हूं, अगर मैं जवान होता, अगर मैं बलवंत होता तो संतान उत्पन्न हो जाती। हमारी अपनी योग्यता नहीं है, हमारी अपनी सामर्थ्य नहीं है, अपना हमारा कार्य नहीं है, परमेश्वर के कार्य है, परमेश्वर की योग्यता है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की सामर्थ्य है, और परमेश्वर का सब कुछ पाता है। और इसलिए जब उसने इस बात को संदेह उत्पन्न किया, परमेश्वर का ठीक है, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जिब्राइल ये स्वर्गदूत होते थे, ये इनका काम मुख्य रीति से संदेश को पहुंचाना होता था। दानिय्येल की पुस्तक में आप देखेंगे, मती में आप देखेंगे, जब मती के सुसमाचार में आप जाएंगे, लुका में भी आगे दोबारा उसके नाम का वर्णन है, दूसरे अध्याय में आगे हम चल के देखेंगे। वो कहता है, मैं इसलिए भेजा गया तुझसे बातें करूं और तुझे ये सुसंदेश सुनाऊं। तुझसे बातें करूं और तुझे क्या सुनाऊं? सुसंदेश। समाचार नहीं, समाचार तो रोज समाचार पेपर में पढ़ते हम, ये शुभ समाचार है। ये शुभ समाचार, परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने जा रहा है। वो समय आ गया है कि इसके कुछ समय बाद उसका बेटा इस संसार में आएगा, और उसके बेटे के जन्म लेने से पहले मैं उसके लिए मार तैयार करूंगा, और उसके मार को तैयार करने के लिए ये यौना जन्म ले रहा है, ताकि वो उस कार्य को पूरा करे जो परमेश्वर ने अनाधिकार से ठहराया है। और मेरे प्रियो, और यह शुभ संदेश है कि और प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, मेरे और आपके पापों के लिए वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये सुसंदेश है। यहां सुसंदेश यौना के लिए था। यौना, इतने परमेश्वर तुझसे ये कह रहा है, मैंने पहले भी कहा कि इतने साल के बाद वो कोई व्यक्ति से बात कर रहा है, और तब वो क्या कहता है, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो जाए तू गूंगा रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया जो ठीक समय पर पूरी होंगी। मेरे प्रियो, ये उसकी निर्बलता थी, ये उसकी निर्बलता थी। मनुष्य की निर्बलता को परमेश्वर ने कहीं छिपाया नहीं है। ये एक परमेश्वर के वचन की विशेषता है। चाहे दाऊद हो, चाहे मूसा हो, चाहे अब्राहम हो, चाहे पौलुस हो, कोई भी हो जो उसके सेवक रहे, ये उसकी निर्बलता थी। और तब हम जानते हैं किस रीति से उसका मुंह बंद हो गया, किस रीति से सब कुछ हुआ। और तब आगे चल के जब वो बाहर निकला तो लोग उससे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो गूंगा है, सब लोग परेशान हो गए, घबरा गए, सब कुछ हो गया, वो घर लौट गया। तब 24 और 25 पद में, जल्दी से 24-25, इन दोनों के पश्चात उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई, और उसने ये कहकर अपने आप को 5 महीने तक छिपाए रखा। इन दोनों में मुझ पर कृपा दृष्टि करके मनुष्य में मेरे अपमान को दूर करने के लिए ही प्रभु ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। स्त्री होने के नाले उसके पास संकोच था, बहुत सारे कारण थे, आगे चल के हम दूसरे उसमें आएंगे, तब उसके उस गीत में पाते हैं जब वो मरियम के साथ मिलती है कि क्या बात होती है, तब हम कुछ बातों को देखते हैं। लेकिन यहां पर परंतु एक बात, उसका मन वो क्या कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझ पर कृपा दृष्टि करके मनुष्य के सामने मेरा अपमान दूर किया है, और इसलिए प्रभु ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है। कितना सुंदर व्यवहार, कितना अच्छे मन से वो स्वीकार करती है। अरे जरूर कुछ समय संकोच रहा, लेकिन उसका संकोच कुछ समय बाद खत्म हो गया, और तब जान गई, उसका विश्वास बढ़ गया, उसकी आशा बढ़ गई, उसने परमेश्वर पर निर्भरता को कहा, ओ परमेश्वर ने अपनी योजना, हो सकता है जब वो आया हो और आने के बाद बातचीत, क्योंकि उसने लिखा है परमेश्वर के वचन में कई सारी चीजें थी, जब वो बोल नहीं सकता था तो बहुत सारी बातों को लिख लिख के वो बताता था, और तब उसकी पति ने समझा, अरे ये तो परमेश्वर का कार्य है, ये तो परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। मेरे प्रभु यूहन्ना का जन्म अद्भुत जन्म है, और इसीलिए जब मैं कहता हूं जब हम बड़े दिन को मनाते हैं, क्रिसमस को मनाते हैं, मैं अक्सर बोलता हूं कि एक विशिष्ट परमेश्वर की एक विशिष्ट योजना है, परमेश्वर के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति तैयार किया गया है, और परमेश्वर के द्वारा एक विशिष्ट व्यक्ति का जन्म हुआ है, वो यीशु है। परमेश्वर के एक यूनिक प्लान फ्रॉम गॉड, यूनिक पर्सन ये जीसस क्राइस्ट, हिज बर्थ, उसका जन्म अद्भुत है, व्यक्ति अद्भुत है, परमेश्वर की योजना अद्भुत है, और उसी योजना का एक भाग यूहन्ना का जन्म भी है। सो मेरे प्रियो, आज जब हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं तो मेरे और आपके लिए मुख्य संदेश क्या है, मैं और आप क्या बात को सोच के जाना चाहते हैं उसे? क्या सचमुच में जकरिया के लिए मुश्किल था इस बात को समझना कि परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर बात करेगा, क्योंकि 400 साल से ज्यादा हो चुके थे वो बात नहीं कर रहा था। कितनी बार मैं और आप इस प्रकार से जीवन को व्यतीत करते हैं, क्या परमेश्वर सचमुच में बात करता है? क्या सचमुच में परमेश्वर बोलता है? कौन सा दिन था जब आपने परमेश्वर की वाणी को सुन लिया, जब आप परमेश्वर के वचन को खोलकर बैठे थे, घुटनों के बल आंसू साथ पढ़ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, क्या परमेश्वर ने आपसे बातें की? परमेश्वर की वाणी को सुनना अद्भुत बात है, ना केवल सुनना लेकिन समझना और भी अद्भुत है। यह नहीं समझ पाया था, पर परमेश्वर ने उसको समझा दिया। कैसे समझा दिया? तो चुप रहे, अगर मेरी वाणी को तू नहीं समझ पा रहा तो तेरा मुंह बंद रहे, मैं अपने समय पे तुझे सिखाऊंगा, अपने समय पे तुझे दिखाऊंगा, अपने समय पे उस कार्य को पूरा करूंगा। परमेश्वर अपना कार्य अपने तरीके से करने के लिए तैयार रहता है। परंतु मेरे प्रिय भाइयों, इस बात को मैं जाना, चाहे आयु हो, चाहे विभिन्न परिस्थिति हो, चाहे जटिल समस्या हो, चाहे कुछ भी हो, हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को प्रोत्साहित करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अपने लोगों को लेकर उठाने वाला परमेश्वर है, और उसने यही कार्य जकरिया और एलिशेबा के साथ किया, और वो आज मेरे और आपके साथ और भी अद्भुत रीति से करने के तैयार है, क्योंकि ये चीजें जब घटी थी उस समय यीशु संसार में नहीं आए थे, अब तो यीशु मसीह संसार में आ गए, उन्होंने और भी सारी चीजों खुलासे में कर दिया, अब तो सारे पर्दे को हटे वो हम देखते हैं, खुले के रूप में देखते हैं, उन बातों को समझना उसके पवित्र आत्मा द्वारा और अधिक समझ सकते हैं, परमेश्वर का वचन खुलासे के रूप में उसने हमारे हाथों में दे दिया, तब फिर हमारा जीवन क्यों डगमगाता है? तब क्यों हम अंधविश्वास में जीवन व्यतीत करते हैं? तब क्यों हम एक नामधारी मसीह होकर जीवन को संसार में व्यतीत करते हैं, झूठी धार्मिकता को लेकर व्यतीत करते हैं? क्यों नहीं हम परमेश्वर के पास आते हैं? मेरे प्रियो, ये क्रिसमस का समय है, क्रिसमस का कल मैं कहीं बोल रहा था, आनंद मनाइए, उत्सव मनाइए, सब कुछ मनाइए, लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह उसमें नहीं है तो सब कुछ बेकार होगा। यीशु मसीह को मत भूलिए, यीशु मसीह को मत छोड़िए। आइए प्रार्थना करें।